الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أردن صاحب، آپ ذرا اپنی اہلیہ کو کہہ دیں گے خواتین میں اس طرح میسج ڈالتا ہوں، اگر ہر کلاس کے لیے وہ ڈال دیں تو. اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم سورہ مائدہ کی تفسیر پڑھتے ہیں، معرفت القرآن جلد نمبر 3 سے، اور جو آیات ابھی تلاوت کی گئیں یعنی آیت نمبر 2، صرف ایک ہی آیت ہے یہ سورہ مائدہ کی، جس کا ہم نے ترجمہ اور ربط آیات اور خلاصہ تفسیر پڑھ کے پچھلی کلاسز کے اندر مکمل کر لیا تھا، اور آج ہم معارف و مسائل سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 18 کے اوپر ہے، جلد نمبر 3 کی. تو ان آیات کے معارف و مسائل میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آیت کے پہلے جملے میں ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، یعنی اے ایمان والوں اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، ٹھیک ہے، ان کو حلال نہ جان لو. حلال جاننے کا مطلب کہ ان کو ان کی بے حرمتی، کیونکہ جب آپ کسی کو کھاتے ہیں تو بھی آپ اس کا پرزرو تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کو آپ کھا رہے ہوتے ہیں، دانتوں میں چبا رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ اس کو ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں، ہضم کر رہے ہوتے ہیں. تو کسی چیز کو کھا لینا یہ بھی اس کی ایک طرح سے بے حرمتی ہی ہوتی ہے، یا کسی کو جو ہے وہ اس کی عزت کو کھا لینا، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے وہ بے حرمتی ہوتی ہے اس کی. تو فرمایا کہ ان کو حلال مت سمجھو اپنے لیے کہ تم ان کو کھا سکو، چاہے ان کی عزت کو کھا سکو، چاہے ان کو فزیکلی کھا سکو، یہ نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے. کیا؟ شعائر اللہ، ٹھیک ہے، تو ان کی تم بے حرمتی نہ کرو. یعنی بے حرمتی کا تعلق صرف جو ہے وہ یعنی حلال ہونے کا تعلق صرف جو ہے وہ کھانے سے نہیں ہے، بلکہ دوسری چیزوں سے بھی حلال ہونے کا تعلق ہے. تو اس میں لفظ شعائر، جس کا ترجمہ نشانیوں سے کیا گیا ہے، شعیرہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، عربی کا لفظ شعیرہ، اس کی جمع ہے شعائر، جس کے معنی ہے علامت، سائن بھی جس کو کہتے ہیں انگریزی کے اندر، کسی چیز کی طرف پوائنٹ کرنے والا والی چیز، ٹھیک ہے، دلیل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، علامت، انڈیکیشن یا انڈیکیٹر، گاڑیوں کے اندر انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ جب آپ رائٹ مڑنے رکھتے ہیں تو آپ انڈیکیٹر کو رائٹ والے کو آن کر دیتے ہیں تو پیچھے والا انڈیکیٹ ہو جاتا ہے کہ اب آپ نے رائٹ مڑنا ہے، تو یہ علامت ہوتی ہے آپ کے رائٹ مڑنے کی، تو اس کو بھی شعیرہ کہا جائے گا. اسی لیے شعائر اور شعیرہ اس محسوس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کی علامت ہو. محسوس کا لفظ کیا مطلب؟ کہ جن کو کہ آپ اپنی جو محسوسات، جو حس ہوتی ہے نا، حس، ان سے آپ، یعنی اس کو حواس خمسہ بھی کہا جاتا ہے، 5 senses، ٹھیک ہے، ان سے آپ فیل کر سکیں، ان سے آپ جو ہے وہ پرسیو کر سکیں، ان سے آپ ٹچ کر سکیں، ان سے آپ سن سکیں، ٹھیک ہے، یہی ہمارے 5 senses ہیں، ٹچنگ، فیلنگ، لسننگ، ہیئرنگ، سیئنگ، ٹھیک ہے. تو محسوس چیز یعنی فزیکلی پرسیویبل چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کی علامت ہو، ٹھیک ہے، کسی چیز کی طرف پوائنٹ کرنے والی ہو. شاعر اسلام، उन आमाल व अफआल को कहा जाएगा जो उर्फन मुसलमान होने की अलामत समझे जाते हैं। उर्फन का मतलब कि मुआशरे में मारूफ हैं, वेल नोन हैं, ये मुसलमान होने की अलामतें। जैसे एक खास अंदाज में टोपी पहनना, मर्दों के लिए एक खास अंदाज में टोपी पहनना, वरना टोपी तो कराई भी जाती है, पहनी भी जाती है दूसरे कल्चर्स के अंदर है। हमारे यहाँ तो कराई ज्यादा जाती है, पहनी कम जाती है, लेकिन जो यहूदी भी एक टोपी पहनते हैं, क्या कहते हैं उसको, शायद हाना का कुछ कहते हैं, और सिख जो है वो भी सर को कवर कर रहे होते हैं, लेकिन मुसलमानों का टोपी पहनने का अंदाज जो है वो मुख्तलिफ है। तो वो एक शायर इस्लाम है टोपी का पहनना मर्दों के लिए, और बुरका पहनना बाकायदा बाहर निकलते हुए जो है वो इस तरीके से अपने आप को ढांपना, एक ऐसी कोई चीज पहने कि जो कि यानी जिस्म के खदोखाल को जो है वो वाजह करने से बिल्कुल छुपा ले, ठीक है, वरना तो छुपाया तो जो है वो क्या कहते हैं उसको, बुरकीनी किस्म की किसी चीज से भी छुपाया जा सकता है, यानी स्विम सूट से भी छुपाया जा सकता है आप अपनी स्किन को, लेकिन जिस्म के खदोखाल तो उससे नहीं छुपते हैं ना टाइट लिबास पहनने से। तो ऐसी जो चीज है, ऐसा जो लिबास है, वो शायर इस्लाम में से देखते ही पता चल जाता है कि अच्छा कोई मुसलमान औरत जा रहे, ठीक है, तो ये शायर इस्लाम कहलाते हैं। और महसूस व मुशाहिद, ठीक है, यानी इनको फिजिकली आप परसीव कर सकते हैं, जैसे नमाज, अजान, हज, खतना और सुन्नत के मवाफिक दाढ़ी वगैरह, सुन्नत तरीके से दाढ़ी रखना, एक खास तरीके से छोड़ देना उसको जो है वो, गुंजान ना बना देना उसको जो है वो, सही रखना यानी यहूदियों की तरह या सिखों की तरह से दाढ़ी नहीं रखना। तो ये शायर इस्लाम है। शायर अल्लाह की तफसीर इस आयत में मुख्तलिफ अल्फाज से मनकूल है, मगर साफ बात वो है, यानी इजिली अंडरस्टैंडेबल साफ बात वो है, जो बहरे मुहीत और रूहुल मानी में हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और अता रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है। तो इस आयत की तफसीर में जो हमने पीछे पढ़ी, तर्जुमा पढ़ा, उसी को आप एक मिनिमल लेवल ऑफ तफसीर क्या होती है आयत की, उसका अपना तर्जुमा होता है, ठीक है, जिसमें थोड़ी सी मुहावराती एक्सप्लेनेशन भी हमारे अकाबिर शामिल करते हैं। फिर उसके बाद जो खुलासे तफसीर है उसमें थोड़ी सी और एक्सपेंशन हो गई तफसीर के अंदर, तो वो जो हमने पढ़ा तो उसमें जरा मुख्तलिफ अंदाज से मनकूल है शायर अल्लाह, मगर साफ बात वो है जो बहरे मुहीत और रुहुल मानी में हजरत हसन बसरी और इमाम अता रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है, और इमाम जसास ने उसको तमाम अकवाल के लिए जामे फरमाया, यानी जितने अकवाल आते हैं ना इसकी तफसीर में उन सबको कवर करने वाली है, सबको जमा करने वाली, ठीक है। वो क्या है, वो ये है कि शायरुल्लाह से मुराद तमाम शराए, ठीक है, यानी शरीयत पूरी की पूरी जो शरीयत है ना वो, और दीन के मुकर्रर करदा वाजिबात व फराइज और उनकी हुदूद हैं, ये सब का सब शायर होगा, ठीक है, दीन के जितने भी अहकाम हैं वाजिबात और फराइज यही अहकाम में आते हैं, ठीक है, बाकी तो गुड टू डू चीजें होती है ना, जिनको मुस्तहबात कहते हैं या मुबाहात कहते हैं, वो अहकाम नहीं होते, ठीक है, कि मुस्तहब अमल जो है वो करो, नहीं करोगे तो पिटाई लगेगी, सजा मिलेगी, नहीं, ये जिसके लिए होता है कि करो नहीं करोगे तो सजा मिलेगी, उसको वाजिब कहा जाता है या फर्ज कहा जाता है, ठीक है, तो ये हैं शायरुल्लाह, ठीक है। अच्छा, उनकी हुदूद भी, कि जो हुदूद नबी अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर कर दी है ना उनसे ना ज्यादा ना उनसे कम, यानी जैसे 5 नमाजों का हुक्म है ना दिन के अंदर, तो 6 नमाजें नहीं पढ़ना, 6 फर्ज नमाजें अपने ऊपर करके, छठी भी जो है आप फर्ज की नियत से पढ़ रहे हैं, वाजिब की नियत से पढ़ रहे हैं, ठीक है, नहीं, या 5 को जो है वो 4 नहीं कर देना, 5 हैं तो उसको 5 ही रखना, उसकी हुदूद के अंदर ही रखना, ठीक है। तो ना सिर्फ ये कि अहकामात बल्कि उसके हुदूद के कॉन्टेक्स के साथ सारी जो तफसील है, ये शायर अल्लाह इस आयत में ला तुहिल्लु शाइर अल्लाह के इरशाद का यही हासिल है कि अल्लाह के शायर की बेहुर्मती ना करो। और शायरुल्लाह की बेहुर्मती एक तो ये है कि सिरे से उन अहकाम को नजरअंदाज कर दिया जाए, दूसरे ये है कि उन पर अमल तो करें मगर अधूरा करें, पूरा ना करें। ठीक है, यहां पर ये नहीं फरमाया कि शायरुल्लाह को मानने से इनकार कर दिया जाए। वो क्यों नहीं फरमाया? क्योंकि यहां पे तो बात ही मानने वालों से हो रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ठीक है, कि तुम जो के मानते हो कि हाँ ये शायर अल्लाह है, नबी अलैहिस्सलाम ने बताए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई जो भी बातें हैं वो सच हैं, और जो अहकामात के दर्जे में हैं वो सारे के सारे जो है वो शायरुल्लाह है, तो तुम तो मानते हो इस बात को, इस वजह से तुमसे ये बात नहीं की जा रही कि मानने से इनकार कर दिया जाए। तो फिर तो तुम या जो लजीना काफरों में आ जाओगे, कफरों में आ जाओगे। ठीक है, तो तुम्हारे लिए क्या चीज है? ये है कि तुम इनको नजरअंदाज ना करो, क्योंकि नजरअंदाज करना जस्ट मीन्स कि आप उसको जो इम्पोर्टेंस उसकी डिजर्विंग इम्पोर्टेंस है वो आप उसको नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये ना करो। और ये कि अमल अगर कर भी रहे हो, पूरा नजरअंदाज नहीं कर रहे, अमल कर रहे हो तो अधूरा अमल कर रहे हो, पूरा नहीं कर रहे, यानी उसकी जैसे तरतील के साथ जो है वो तिलावत नहीं कर रहे हो नमाज के अंदर, और नमाज जो है ना वो बहुत ही तेजी के साथ जो है वो अधूरे 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 सब सजदा भी सही से नहीं किया, और जो है रुकू भी सही से नहीं कर रहे हैं, और इस तरह से अधूरा अमल करना, या जकात दे रहे हैं तो पूरी तरह से जकात नहीं दे रहे, कुछ कैलकुलेट कर ली, कुछ कैलकुलेट नहीं करी, कुछ जो है वो ऐसे ही हो गया मामला, तो इस तरह से अधूरा करना, तो बेहुर्मती की दूसरी शक्ल क्या है? अधूरा कर। और बेहुर्मती की तीसरी शक्ल फरमाते हैं कि मुकर्रर करदा हुदूद से तजावुज करके आगे बढ़ने लगे। ठीक है, यानी या तो इस तरफ आगे बढ़ने लगे जिसको इफरात कह सकते हैं, या दूसरी तरफ आगे बढ़ने लगे जिसको तफरीद कहते हैं। ठीक है, तो ये तीसरी शक्ल है बेहुर्मती करने की शायरुल्लाह की। ला तुहिल्लु शाइरल्लाहि में इन तीनों सूरतों से मना फरमाया गया है। ठीक है, तो काफी अहम चीज है मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए, अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातब करके ये जो ला तुहिल्लु के लफ्ज के अंदर ये तीनों चीजें जो है वो कवर फरमा दी। यही हिदायत कुरान करीम ने दूसरे उनवान से इस तरह इरशाद फरमाई है कि वमन युअज्जिम शाइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक्वल कुलूब, यानी जो शख्स अल्लाह की हुरमात की तअज़ीम करे तो वो दिलों के तकवा का असर है। ठीक है, यानी इसको अल्लाह ताला का ख्याल है, लिहाज है। ठीक है, यानी ही इज कॉन्शियस ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला, अवेयर ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला, ध्यान रहता है इसका अल्लाह ताला की तरफ। ठीक है, कि अल्लाह ताला देख रहे हैं, अल्लाह ताला जानते हैं मैं जो कुछ कर रहा हूं, तो मैं अल्लाह ताला के बनाए हुए अहकामात की बेहुर्मती ना करूं, चाहे जिस किसी भी शक्ल में हो, पहले शक्ल में हो, दूसरी शक्ल में हो, तीसरी शक्ल में हो। ठीक है, मैं अल्लाह ताला के जो और निशानियां हैं जैसे सफा और मरवा है, काबतुल्ला है, मोमिन की इज्जत है, ठीक है, मैं इनको पामाल ना करूं। सही है, तो अल्लाह कॉन्शियसनेस जो है ना ये यही शायर अल्लाह की तआज़ीम का सबब बनते हैं। और जिसको अल्लाह कॉन्शियसनेस ना हो, है जब बस जो है वो लोगों का डर हो उसको, चाहे वो लोग में से कोई भी हो, अम्मी अब्बू का डर है, इस वजह से जो है वो रुक जाता है, जिनका था डर वो नहीं है घर, अब जो चाहे कर, ये उसकी जिंदगी का उसूल है ना। अब हमारे हजरत ये पढ़ा अपने पुराने बयान के अंदर के मौजूद है फितरा के, जिनका था डर वो नहीं है घर, अब जो चाहे कर है। अब अल्लाह ताला भी ऐसे ही है क्या कि वो भी नहीं है तुम्हारे घर में? हाँ भी, अल्लाह ताला जो है ना वो अर्श के ऊपर है ना, वहां पे अकीदे की बहस छेड़ दी, अल्लाह ताला तो अर्श के ऊपर है, मेरे घर के अंदर तो नहीं है, तो अब जो चाहे कर। भाई अल्लाह ताला अपने इल्म के साथ तो हर जगह मौजूद है, कोई चीज छुपी हुई नहीं अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला का डर नहीं है आपको, आपको जो है वो फलाने साहब का डर है, हजरत को पता चल रहा है। ठीक है, हजरत को अपना पता चल रहा है किसने शिकायत लगाई मेरी, है ना। अनफॉर्चुनेटली जहन नहीं बना होता, माँ बाप ने पता नहीं कौन सा वाला जहन बना दिया होता है, तो छोटे छोटे बच्चे भी जो है ना वो इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं, हजरत को ना पता चलता है, अल्लाह के बंदे हजरत है, फरिश्ते बच्चों का क्या कसूर है? तो माँ बाप का कसूर है ना, ये अपने बच्चों का ऐसा जहन बनाते हैं कि उनको अल्लाह का कोई खौफ ना हो, अल्लाह ताला की कोई परवाह ना हो, कोई फिक्र ना हो, और जो है वो किसी इंसान की फिक्र हो बस, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। कोशिश यही करनी है, फिक्र और मेहनत यही करनी है कि अल्लाह अवेयरनेस ये पैदा हो हमारे अंदर भी और हमारी औलाद के अंदर भी। और तरीका वैसे इसका यही है कि अपने अंदर पैदा हो जाए तो फिर औलाद के अंदर, फिर वो हमारे अंदर से ट्रांसफर होती है। ठीक है, यही हिदायत कुरान करीम ने दूसरे, तो ये बात अपने पर भी पढ़ ली कि भाई ये तो तकवा की अलामत है ना कि शायरुल्लाह की आपको फिक्र है या आपकी ताजीम करते हैं शायरुल्लाह की। इरशाद है, वला शहरुल हराम ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا, يعني شهر حرام में, शहर से मुराद यहाँ पर महीना, क्योंकि अरबी का दुबान का लफ्ज शहर जो है उसका मतलब महीना होता है, तो शहर हराम में कत्लो कताल करके उसकी बेहुरमती ना करो, क्योंकि हुक्म शरीयत का क्या था जो कि पहले से चला आ रहा था। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में ये नया हुक्म नहीं आया था, ये पहले से शरीयत के अंदर हुक्म था, यानी दीन इब्राहिमी के अंदर, कि शहरुल हराम के अंदर जो है ना वो किताल नहीं करना। ठीक है, यानी फिजिकल फाइट नहीं करनी, किताल का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल होता है जंग व जदाल के लिए। तो शहर हुरम जो है ये, या अशहरु हुरम, वो 4 महीने हैं जिनमें बाहिमी जंग करना शरअन हराम था। ठीक है, अब यहाँ पे था का लफ्ज जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब, तीन तो ऑर्डर में है, ज़िलक़ादा के बाद जो है वो ज़िलहज्जा आता है, उसके बाद मुहर्रम आता है, और चौथा जो है ना वो फिर रजब, ये आउट ऑफ ऑर्डर है, यानी बीच में गैप आ जाता है कुछ महीनों का, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादी जमादी अव्वल, जमादी सानी, फिर उसके बाद जो है वो रजब। बाद में ये हुक्म जमहूर उलमा के नजदीक मनसूख हो गया। ठीक है, जमहूर उलमा यानी उलमा की मेजोरिटी, अक्सरियत, ठीक है, उन वो इस इजमा पर मुत्तफिक हो गए, इस बात पे कंसेंसस हो गया कि नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत में शुरू में तो ये था लेकिन बाद में जो है ना ये मनसूख हो गया था ये हुक्म। ठीक है, तो इसी को लिखा कि ये हुक्म जमहूर उलमा के नजदीक मनसूख हो गया, सब इसके ऊपर मुत्तफिक हो गए कि हाँ ये चीज मनसूख हो गई है। ठीक है, यानी नबी अलैहिस्सलाम उसको मनसूख कर चुके थे जब फिका मुरतब हो रही थी, जब जो है वो बाकायदा इन चीजों को कलमबंद किया जा रहा था। तो फिर फिका में तो पीछे जाकर के देखते हैं ना कि अच्छा कुरान के अंदर ये आयात में ये हुक्म था, और फिर जो है नबी अलैहिस्सलाम के ये अमल था, ये हदीसें थी। ठीक है, और फिर उनके ऊपर तआमुल उम्मत किया था कि जो सहाबा कराम ने जो जो उसके ऊपर अमल किया, फिर सहाबा के बाद ताबईन ने उसके ऊपर अमल किया, तो फकीह ने जो फुकहा जो थे जब उन्होंने अपनी फिका मुरतब करी, ठीक है, उसको बाकायदा जॉट डाउन किया किताबों में अपनी लिखा, तो उस वक्त जो है ना जब इस वाले मसले को एड्रेस किया गया तो मालूम हुआ कि यानी इस बात को रिकॉर्ड किया गया कि ये चीज जो है वो मनसूख हो चुकी थी। ठीक है, उलमा ने मनसूख नहीं करी, मनसूख हो गई थी, क्योंकि नस का जो मामला है ये उलमाए कराम नहीं करते, जो चीज शरीयत के अंदर है वो भाई नबी अलैहिस्सलाम ही मनसूख कर सकते थे। ठीक है, तो वो हो गया। नीज हरम मक्का में कुर्बान होने वाले जानवर, ठीक है, यानी जो 4 महीनों में कताल की पाबंदी थी ना, वो कताल की पाबंदी अब नहीं रही नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत में। नीज हरम मक्का में कुर्बान होने वाले जानवर और खुसूसन वो जिनके गले में कुर्बानी की अलामत के तौर पर कलादा डाला गया है। अभी वैसे जहन में अभी भी एक बात आई कि नबी अलैहिस्सलाम के अमल से पता चला ना कि भाई ये मनसूख हो गया था। बदर का मौका, ठीक है, गजवा बदर, वो तो बाकायदा फुल फ्लेज फाइटिंग हुई ना, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम उसकी तो नियत से नहीं निकले थे, लेकिन हमला करने की नियत से तो निकले थे ना। ठीक है, काफले के ऊपर हमला करने की नियत से तो नबी अलैहिस्सलाम 313 असहाब को लेकर के निकले थे। ठीक है, तो वो हमला जो था वो भी तो किताली की एक शक्ल होती है। ठीक है, बाद में जाकर के वो उधर से भी उनकी फोर्सेज आ गई, वो पूरे जो है वो जंग हो गई। तो नबी अलैहिस्सलाम के अमल से जो है वो साबित हुआ कि I'm sorry, यार मैं कहाँ पे, तो रमजान की बात करूँ, सॉरी जहन में बात आई भी तो वो गलत आई, माजरत अलहमदुल्ला ने याद भी दिला दिया कि क्या बोल रहे हो भाई 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 से मुराद वो मुहावरा था। तो नहीं वो रमजान की बात है, तो रमजान में बात है, कौन सी 4 महीने की बात है। तो नहीं नीस हरम मक्का में कुर्बान होने वाले जानवर, और खसूसन वो जिनके गले में कुर्बानी की अलामत के तौर पर कलादा डाला गया है, उनकी बेहुर्मती ना करो। ठीक है, इन जानवरों की बेहुर्मती की एक सूरत तो ये है कि यानी वो लोग कलादा डाल लेते थे, खास किस्म का पट्टा जो है ना वो डाल दिया करते थे, उससे इंडिकेशन होती थी कि भाई ये कुर्बानी के लिए रिजर्व जानवर है, तो अब इनका ख्याल रखना है क्योंकि ये कुर्बानी के लिए है। तो इन जानवरों की बेहरमती की एक सूरत तो यह है कि उनको हरम तक पहुंचने से रोक दिया जाए या छीन लिया जाए। दूसरी सूरत यह है कि उनसे कुर्बानी के अलावा कोई दूसरा काम, सवारी या दूध हासिल करने वगैरह का लिया जाए। आयत ने इन सब सूरतों को नाजायज करार दे दिया। ठीक है, तो ये तो हज के लिए जो लेके जाने वाले जानवर थे, लेकिन कुर्बानी की नीयत से ले जाने वाले जानवर थे तो उनके साथ भी ये करना नाजायज है। और हम ये भी जानते हैं कि बकरीद जो मना रहे हैं अपने घरों के अंदर, वहां पर भी कुर्बानी की नीयत से जो जानवर आपने जब मुख्तस कर दिया ना कि हाँ भी मैंने इसको कुर्बान करना है, या आप खरीद के लेकर के कुर्बानी की नीयत से, तो अब उनके साथ जो है वो सवारी का मामला उनके साथ भी नहीं कर सकते, और दूध हासिल करने वगैरह का काम जो है वो उनसे भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो कुर्बानी के लिए खास है। फिर फरमाया वला आमीनल बैतल हरामा यबतगून फजलन मिर रब्बिहिम वरिदवाना, यानी उन लोगों की बेहुर्मती ना करो जो हज के लिए मस्जिदुल हराम का कसद लेकर घर से निकले हैं, और इस सफर से उनका मकसूद ये है कि वो अपने रब का फजल और रजा हासिल करें। ठीक है, जैसे पहले भी आप सुनते ही रहते हैं अक्सर कि ये जो काफिर थे ये भी रब की रजा हासिल करने के लिए जाते थे मक्का मुकरमा, है ये भीख मांगे के नहीं जाते थे मक्का मुकरमा। ठीक है, वो भीख मांगने की नीयत से जो जाते होंगे तो वो जाते होंगे, लेकिन बाकी जो काफिर थे तो वो तो अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए बैतुल्लाह जा रहे होते थे। ठीक है, तो किसकी रजा, लात मनात की रजा नहीं, वो जो जो बुत होते थे ना वो तो साइड में उनकी इबादत वगैरह भी कर लिया करते थे, लेकिन मकसद उनका अल्लाह की रजा होता था। तो ये लोग जो है ना ये इंतहाई दीनदार किस्म के लोग थे, मसला इनका सारा क्या था कि ये अपनी मन मर्जी की दीनदारी करते थे। ठीक है, और जो अल्लाह के रसूल हैं वो जो तरीका बता रहे हैं और जिस गलत तरीके से रोक रहे हैं उनकी नहीं मानते थे। ठीक है, मैं और माय मी एंड माय लॉर्ड वाला इनका भी दीन था, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली आजकल उनमें से भी अक्सर का मी एंड माई लॉर्ड वाला दीन है। ठीक है भाई, मी एंड माई लॉर्ड फॉर वर्शिप, मी एंड माई लॉर्ड फॉर दुआ, नॉट द वे हाउ टू प्लीज लॉर्ड, राइट, नॉट द वे हाउ टू प्लीज माई लॉर्ड। वो वे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ही पता चलेगा ना। ठीक है, और आप जो है वो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को ना आप सीखना चाहते हैं ना उसको आप पूछना चाहते हैं, जिनके पास जिन्होंने सीखा है उस तरीके को उनसे आप सीखना नहीं चाहते हैं, तो फिर तो अपने तरीके पे तो फिर कबूलियत नहीं है। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही तो है कि अल्लाह तो सिर्फ एक ही है इबादत के लायक, तो सिर्फ नबी, सिर्फ अल्लाह ताला है, नबी अलैहिस्सलाम तो इबादत के लायक नहीं है भाई, कोई भी रसूल इबादत के लायक नहीं, वो तो सिर्फ अल्लाह है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अल्लाह के जो रसूल हैं वो तरीका बताएंगे, उस तरीके से जो है वो अल्लाह को फिर राजी करेंगे। अच्छा, एक और बात कि वो लोग, वो जो मुआशरा था ये इंतहाई दीनदार मुआशरा था लेकिन मनमर्जी वाला दीन। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम ने भी बता दिया और मुशाहिदे से भी ये बात जो है वो बिल्कुल जाहिर हो रही है कि बदा अल इस्लामु गरीबन सयउदु कमा बदा। ठीक है, कि इस्लाम जो है ना वो गरीब, बिल्कुल एक अजनबी की चीज के तौर पे शुरू हुआ था और ये अनकरीब लौट करके वैसे ही हो जाएगा जैसे कि ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो अब ये दीन जो नबी अलैहिस्सलाम लेकर के आए थे, ठीक है ना, इसके मुकाबले एक दूसरा दीन चल रहा था, वो ये था कि भाई दीन इब्राहिमी है, वो हमारे बाप दादा से हम तक पहुंचा है, उसके अंदर जो भी हम करते हैं तो वो सही है, ठीक है ना, बस वो ऊपर से पहुंचा है, हमारे बाप दादा का तरीका है ये, और हम कहते हैं कि वो दीन इब्राहिमी है, हम वही अमल करते रहेंगे अल्लाह को राजी करने के लिए, ठीक है ना। तो वो एक पैरेलल दीन था, और नबी अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर के आए वो उसकी बहुत सारी चीजों की नफी करता था, कुछ चीजों का इस्बात भी करता था लेकिन अक्सर चीजों की नफी कर देता था, ठीक है। तो अब ये दीन जो है जब स्टार्ट हुआ तो वो जो सो कॉल्ड दीन इब्राहिम वाले जो लोग थे उन्होंने इसकी मुखालफत करी, इसके जो है वो मानने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, हम अपनी मनमर्जी के दीन, जो वो मनमर्जी का तो नहीं कहते थे, नाम तो कोई नहीं लेता ना, ये मेरे मनमर्जी का दीन है, कहता तो कोई भी नहीं है इस चीज को, ठीक है, लेकिन कर वो अपनी मनमर्जी रहे होते हैं। तो वही सिचुएशन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पलट करके वहीं पहुंच जाएगी जहां से शुरू हुई थी, ऐसे ही हो जाएगा आखिरी जमाने के अंदर। तो जब हम हदीस मुबारका के अंदर आखिरी जमाने के हालात पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो आखिरी जमाने के बड़े फितनों में से, कुर्बे कयामत की बड़ी अलामत में से एक अलामत जो है वो फितने दज्जाल की अलामत, ठीक है ना, कि दज्जाल जो है वो नमूदार होगा, और बड़ी तफसील के साथ नबी अलैहिस्सलाम ने दज्जाल के आने से पहले के वाकयात भी बताए और दज्जाल के जाहिर होने के बाद के वाकयात भी, ठीक है। अब वो वाकयात जब हम पढ़ते हैं और ज्यादा उसके ऊपर गौर करते हैं और जितना करते चले जाते हैं अल्लाह ताला, और जो है वो हदीसों की तफसीलात भी सामने आती जाती हैं और चीजें भी अल्लाह ताला खोलते हैं, तो उन सारी चीजों को जो है ना जब सामने रख करके हम देखते हैं ना कि ये जो फितने दज्जाल का जमाना होगा, ये इसकी हदो खाल क्या होंगे, इसकी सूरत क्या होगी, तो क्या चीज सामने आती है, ठीक है, क्या चीज सामने आती है? अगर आपसे पूछें, ओपिनियन नहीं पूछ रहे आपका, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने अगर गौर किया हो या आपने टीचर से सुना हो या हदीसें पढ़ी हो तो आपके जहन में क्या एक पिक्चर बनती है, व्हाट काइंड ऑफ अ टाइम दैट वुड बी, ठीक है, कंसिडरिंग द फैक्ट जो कि अभी हमने पीछे थोड़ी देर पहले बात करी है कि नबी अलैहिस्सलाम का जमाना जो था उसके अंदर जो काफिर भी थे ना वो दीनदार काफिर, अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए मक्का मुकरमा जा रहे हैं, है ना, उन्हीं का जिक्र है ना यहाँ पर, ईमान वालों का तो जिक्र नहीं है यहाँ पर। वला आमिन अल बैत अल हराम यब्तगूना फजलन मिन अल्लाह मिन रब्बिहिम व रिदवाना, तो काफिर भी अल्लाह की रजा तलाश करने के लिए काबतुल्ला जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ये जमाना लौट करके फितने दज्जाल का जमाना, ये हनाना सेंटर नहीं चलेगा, अभी मैंने अपना नाम जो रखा हुआ है हनाना सेंटर, तो मुझे नाम रखना चाहिए लेकिन मैं तो नहीं रखता हनाना सेंटर, ठीक है, तो आपने क्यों हनाना सेंटर रखा हुआ है, पहले भी बोला था, ठीक है। तो पलट के जमाना जब उसी शक्ल को पहुंच जाता है तो ये बात हदीसों से भी साबित होती है कि जो दज्जाल होगा ना ये दुनियादार आदमी नहीं होगा, ठीक है ना, यानी जिस तरह से कि हम चंद कुछ अरसा पहले थे या बहुत अक्सर जो है वो हमारा मुआशरा पहले था कि बिल्कुल जिसको लादीनियत कहते हैं, है ना, कुदरतन जुमे के दिन जो पूरा का पूरा दर्स हुआ है सूरह अनआम का जो दर्स हुआ है और उसमें हमने मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से जो पढ़ा है तो उसमें उन्होंने क्या बात लिखी है, ला दीनियत, लाइक नो दीन, ला दीनियत है ना, यानी साइंस इज द दीन, ठीक है ना, एथियज्म, ठीक है, तो वो चीज भी दज्जाल के आने के वक्त में वो चीज भी बदल जाएगी जो कि आपको हजरत अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में नजर आ रही थी, जिसके ऊपर उन्होंने ये किताब लिखी है, जिसके ऊपर हम ये दर्स दे रहे हैं जुमे वाला, ठीक है ना, लादीनियत वाला फितना। जब फितने दज्जाल अपनी इंतहा को पहुंचेगा तो वो चीज भी तब्दील होकर के वो लादीनियत से दीनियत में तब्दील हो जाएगी, और दज्जाल जो होगा वो इंतहाई दीनदार इंसान, लेकिन कौन सा वाला दीनदार, मनमर्जी वाला दीनदार, ठीक है, मन मर्जी वाला दीनदार, ठीक है, और
उस वक्त जो दीनदार मुसलमान होंगे, जो उनमें से मनमर्जी वाले दीनदार मुसलमान होंगे, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, यस ही इज अ वेरी यानी रिलीजियस पर्सनालिटी, बहुत ही दीनदार इंसान है, बहुत ही जो है वो, ये तो मुसलमानों का खैर ख्वाह है और ये तो बड़ा जो है वो नेकी के काम करने वाला है। लेकिन नेकी की डेफिनेशन बदल चुकी होगी, नेकी की डेफिनेशन बदल चुकी होगी, ठीक है ना। तो इस वजह से जो उस वक्त डेफिनेशन खिलाफे कुरान, खिलाफे सुन्नत जो डेफिनेशन बन चुकी होगी, दज्जाल उस वाले दीन के ऊपर अमल कर रहा, और जो भी मुसलमान उस वक्त उसी वाले दीन पे अमल कर रहे होंगे, वो दज्जाल को बहुत बड़ा हमदर्द और बहुत बड़ा नेक और बहुत बड़ा मुखलिस इंसान के तौर पे कबूल कर लेंगे, ठीक है। और कोई ये माथे के ऊपर कफरा शफरा जो है वो उनको नजर नहीं आएगा, या नजर भी आएगा तो उसकी कोई ना कोई तावील कर लेंगे, ठीक है ना। इसका तो असल में तो ये तो बस होता है कि ये तो कोई साइन है, बर्थ मार्क है, या तो ये तो एक्सीडेंट की वजह से हो गया होगा, या जो है ये तो वो नहीं है जो कि दीवाने मौलवी लोग जो है वो कहते हैं, वो कोई थोड़ी है ना। ये तो बस हो जाते हैं, कभी किसी का कोई साइन हो जाता है, कभी किसी का कोई साइन हो जाता है। इनकार कर देंगे कि नहीं, दिस डज नॉट मीन एनीथिंग। क्यों इनकार कर देंगे? बिकॉज दे विल ऑलरेडी बी इन लव विद हिम, वो उससे मोहब्बत में मुब्तला होंगे। और जब किसी के साथ आपको मोहब्बत हो जाती है ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने बताया, वो अपनी अकल से और अपनी समझ से नहीं बात करें, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि हुब्बु का शय युमी व युसिम, कि तुम्हारा किसी चीज से मोहब्बत करना तुम्हें अंधा कर देता है और तुम्हें बहरा कर देता है। यू आर नॉट रेडी टू लिसन टू एनीथिंग अगेंस्ट हिम और हर, कुछ सुनने के लिए तुम तैयार नहीं होते हो, कुछ दलील देखने के लिए तुम तैयार नहीं होगे, तुम जब मोहब्बत में मुब्तला हो जाओ। भाई अल्लाह की मोहब्बत में जब कोई मुब्तला हो जाता है, तो अब कोई आकर के बोले अल्लाह इज नॉट फेयर, तो कहते हैं ना भाई, अनफॉर्चुनेटली कितने मुसलमान हैं और नौजवान नस्ल के मुसलमान हैं, लड़के और लड़कियां, उनके बारे में पता चलता है, वो दुनिया के अंदर जब देखते हैं ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं होता, वैसा क्यों नहीं, तो वो कहना शुरू करते हैं अल्लाह इज नॉट फेयर, अल्लाह ताला नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला, जो अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला नहीं है। तो जब कोई ईमान वाला जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, सही ईमान वाला, ठीक है ना, वो जब ये बात सुनता है तो वो उससे बर्दाश्त होता है ये? हाउ कैन यू, हाउ डेयर यू से समथिंग लाइक दैट अबाउट अल्लाह, अल्लाह इज नॉट फेयर। बेशक तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही, बहुत सारा जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो जुल्म नजर आता है, बहुत सारी जो, और अल्लाह ताला ही हर चीज के ऊपर कुदरत रखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह इज नॉट फेयर। नहीं तैयार होता ईमान वाला कभी भी इस बात को मानने के लिए, क्यों नहीं? क्योंकि उसको अल्लाह से मोहब्बत है, ठीक है ना। और हकीकत भी यही है कि अल्लाह ताला इज फेयर, ठीक है ना, लेकिन उसको मोहब्बत नहीं है। वो कहते हैं अल्लाह ताला जो है वो नाउज बिल्ला इंसाफ नहीं कर रहे, अल्लाह ताला जो है वो जुल्म कर रहे हैं, ये क्यों नहीं मानता इस वाली बात को, ठीक है ना। हालांकि इसके पास कोई ऐसे ठोस दलाइल नहीं होते जवाब देने के लिए, ईमान होता है इसका, एतमाद होता है इसको इस बात के ऊपर, लेकिन दलाइल इसके पास नहीं होते, लेकिन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता मोहब्बत की वजह से। उसी तरह आप दुनिया में देखें, आपको अपने किसी लीडर से मोहब्बत हो जाए, पॉलिटिकल लीडर हो या जो भी लीडर हो, रिलीजियस लीडर हो कोई भी, उसकी जो है वो लाख बुराइयां सामने आ जाए, बिल्कुल सुनने के लिए तैयार, बिल्कुल मानने के लिए तैयार। तो ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिया, हुब्बुक शय युमी व युसिम। अब सोचें जो दज्जाल की मोहब्बत में मुब्तला होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो देखेगा कि ये तो बड़ा अच्छा नाइस पर्सन है, बड़ा जो है वो दीनदार है, मेरी मेरी डेफिनेशन ऑफ दीन के मुताबिक तो बड़ा जबरदस्त दीनदार है, राइट। तो अब उसके बारे में कोई मौलवी साहब आकर के, कोई उस वक्त के नेक इंसान आकर के सही मानों में जो बातों को समझने वाले हैं, वो आके कहेंगे नहीं, ये तो असल में तो भाई इसका अकीदा देखो तुम, अकीदा इसका कितना गलत है, ये तो फराइज का इनकार कर रहा है, ये तो जो है वो सुन्नतों को जो है वो उनकी है ना। अच्छा, ये सुन्नत सिर्फ वो नहीं, दाढ़ी नहीं होगी इसकी, नहीं उसकी दाढ़ी, मेरा तो ख्याल है कि उसकी पक्की दाढ़ी होगी, इतना भी बेवकूफ नहीं होगा कि वो जो है ना वो क्लीन शेव, पता नहीं अल्लाह आलम सब क्या होगा, क्लीन शेव्ड होगा दज्जाल के, नॉन क्लीन शेव्ड होगा मैं नहीं मालूम, लेकिन इतना आसान मसला नहीं होगा उसका कि बस उसकी दाढ़ी नहीं है, क्योंकि दाढ़ी ना होना जो है ना ये किसी को इंसान ईमान से खारिज नहीं करता, ठीक है ना, फिस्को फुजूर का मुबतला होता है दाढ़ी ना रखने वाला, लेकिन ईमान से तो खारिज नहीं हो जाता ना, काफिर तो नहीं हो जाता दाढ़ी मुंडाने से, वो भाई वो तो काफिर होगा। तो उसका मसला जो है ना वो अकायद का मसला होगा, वो फराइज का इनकार करने वाला होगा, ठीक है। तो अब लोग आके समझाएंगे कि भाई ये फराइज का इनकार कर रहा है, इसका तो अकीदा ही खराब है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई मानने के लिए तैयार नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये फितने दज्जाल जो है ना, ये कोई लॉलीपॉप चूसने वाला मसला नहीं है, ये कोई जो है वो गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। ऐसे तो नहीं नबी अलैहि सलाम ने इतना कुछ बताया, सहाबा कराम जो है वो रोना शुरू हो जाते थे सुन करके, और ये भी फरमाया कि हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल से डराया, ऐसे खाम खामी डराया। वो आएगा, सारे माशाल्लाह हम जैसे मुवाहिद लोग जो हैं सब उसको पहचान जाएंगे, और उसके माथे के ऊपर कफरा लिखा होगा, सब जो है उसको एक्नॉलेज कर लेंगे, हाँ ये दज्जाल है, मारो पकड़ के उसको उधर से। हम तो मॉब जस्टिस के जरिए से उसको खत्म करते हैं, हमारा बस ना चले, लेकिन ये तमाशे नहीं होंगे उस वक्त, ठीक है। तो रब का फजल और रजा तलाश करना, ठीक है ना, ये काफिर भी करते थे और आज भी रब का फजल और रजा तलाश करने के लिए, दीन का हुलिया बिगाड़ देने वाले भी जो है वो रब का फजल और रजा तलाश करने के लिए कर रहे होते हैं काम, ठीक है ना। लेकिन कबूलियत किसकी है? सिर्फ और सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम से, जो पक्का ठक्का ऑथेंटिकेटेड रास्ता है, सिर्फ उसकी कबूलियत और उसके अलावा किसी चीज की कबूलियत नहीं, ठीक है। उम्मीद है कि इतना लंबा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। क्या लिखा है उन्होंने कि अभी भाई ने करीबी फैमिली शादी की एक वीडियो सेंड की जिसमें कपल का ड्रेस अप क्या कपल का ड्रेस अप हुए ईसाइयों, जैसे मर्द और औरत सब साथ, और बैकग्राउंड में अल्लाह ताला के 99 नाम की ऑडियो लगी हुई। जी वो डांस वांस नहीं कर रहे थे? आजकल तो बहुत सारे दीनदानों के घरानों में सुना है कि जी शादी में तो डांस होना जरूरी है, उसके बगैर तो शादी हो ही नहीं सकती, और पर्दा वर्दा तो ये तो पुरानी चीज हो गई ना, अब तो पर्दे की कोई नाउज बिल्ला जैसे शरीयत में से पर्दा निकल चुका है, और 99 नामों की ऑडियो लगी हुई होती है, और अक्सर जो है उसके अंदर म्यूजिक भी चल रही होती है साथ साथ, ठीक है। अब ना पहले म्यूजिक होती थी ना, पहले म्यूजिक जो होती थी वो नॉन मुस्लिम्स की वो वाली म्यूजिक होती थी, अब तो 99 नामों के साथ म्यूजिक होगी, और बहुत उसके अंदर जो है ना वो ये फील हो रहा होगा कि ये तो बड़ा इस लाइक बड़ा रूहानी किस्म का मामला चल रहा है, हालांकि वो शरीयत की खिलाफ वर्जी होगी, उसके अंदर रूहानियत का नाम भी नहीं हो, लेकिन उसको रूहानी चीज समझा जा रहा हो, ठीक है। तो इस तरह की बेशुमार चीजें इस वक्त ऑलरेडी सामने आ चुकी हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इसके अंदर इजाफा हुआ चला जा रहा है। तो फरमाते हैं कि इन लोगों की बेहरमती ना करने का मतलब ये है कि इस सफर में उनसे मुजाहमत ना की जाए, लड़ाई छड़ाई ना की जाए, ना कोई तकलीफ पहुंचाई जाए। उसके बाद इरशाद फरमाया, वएदा हललतुम फस्तादु, यानी पहली आयत में बहालत एहराम शिकार की जो ममानियत की गई है उसकी हद बतला दी है कि जब तुम एहराम से फारिग हो जाओ तो शिकार करने की ममानियत खत्म हो गई है, अब तुम शिकार कर सकते हो, ठीक है। यानी तुमने काबतुल्लाह को जो है वो हक अदा कर दिया, अब जो है तुम कार कर सकते हो, तो ये चीज जो है वो अच्छा। आयते मुतज़क्किरा में इस मुआहदे के अहम जुज का बयान हो रहा है जो हर इंसान और रब्बुल आलमीन के दरमियान है, इसके चंद अज्जा का यहाँ पर यहाँ तक बयान हुआ है, यानी मुआहिदा जिसका कि नंबर 1 आयत के अंदर बता दिया था कि अपने वादों को पूरा करो, तो अब उसकी फर्दर डिटेल्स अज्जा, तो चंद अज्जा का यहाँ तक बयान हुआ है, जिसमें अव्वल मुतलकन शायरुल्लाह की ताजीम और उनकी बेहुरमती से बचने की हिदायत है, और फिर खास तौर पर उन शायरुल्लाह की कुछ तफसीलात हैं जो हज से मुताल्लिक हैं, इनमें बकसद हज आने वाले मुसाफिरों और उनके साथ आने वाले कुर्बानी के जानवरों से किसी किस्म की मजाहमत ना करने और उनकी बेहरमती से बचने की हिदायत। इसके बाद मुआहिदे का दूसरा जुज इस तरह इरशाद फरमाया, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिद अल हरामी अन तअतू। ठीक है, यानी जिस कौम ने तुमको वाकया हुदैबिया के वक्त मक्का मुकरमा में दाखिल होने और उमरा करने से रोक दिया था और तुम सख्त गम गुस्से के साथ नाकाम वापस आ रहे थे, अब जब जबकि तुमको कुव्वत और कुदरत हासिल है, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिछले वाकये के गम गुस्से और बोझ का इंतकाम इस तरह लिया जाए कि तुम उनको बैतुल्लाह और मस्जिद हराम में दाखिल होने और हज करने से रोकने लगो, क्योंकि ये जुल्म है और इस्लाम जुल्म का इंतकाम जुल्म से नहीं लेना चाहता, लेना नहीं चाहता है, बल्कि जुल्म के बदले में इंसाफ करना और इंसाफ पर कायम रहना सिखलाता है। ठीक है, तो एक तो जुल्म की क्लियर डेफिनेशन साफ सुथरी के अल्लाह का हुक्म, उसकी खिलाफ वर्जी करना जुल्म है। तो गुनाह के लिए अरबी जुबान के अंदर जम का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, इसम का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है और जुल्म का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो काफिर को जो है वो जालिम भी कहा गया कुरान के अंदर ना। ठीक है, लेकिन यहां पर जुल्म से मुराद के जितना उन्होंने गलत किया था उससे तजावुज करके तुम ज्यादा गलत करना शुरू कर दो। ठीक है, तो अब तुम्हारा स्टेटस अलग है, यू आर अंडर ए सिस्टम, दे वर नॉट अंडर ए सिस्टम, वो तो अपनी मनमर्जी कर रहे थे, है ना, मनमर्जी से अल्लाह के फजल भी तलाश करने के लिए जाते थे और मनमर्जी से जो है वो तुम्हें भी रोकते थे, तो उनके ऊपर तो कोई अल्लाह का रसूल नहीं था ना जो कि उनको रोकता टोकता और उनकी जो है वो इसलाह करता। तुम्हारे साथ तो ऐसा मामला नहीं है, यू आर नॉट विजिलेंटीज, राइट, तुम जो है वो अपनी आजाद तुम लोग नहीं हो, तुम तो अल्लाह के रसूल के ताबे हो ना। ठीक है, तो अब अल्लाह के रसूल तो तुम्हें नहीं कह रहे इस ये काम करने के लिए, तो तुम फिर क्यों अपने तौर पर क्यों ये काम कर रहे हो। ठीक है ना, व्हेन व्हेन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज देयर, ठीक है, तो भाई वो जो तुम्हें कहेंगे करने को वो करना है, अपनी राय से को थोड़ी करना है। हाँ, अगर तुम ऐसे होते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे मौजूद नहीं है, ठीक है ना, किसी दूर दराज जगह पर हैं और आप किसी दूर दराज जगह पर हैं, अब आप राबता नहीं कर सकते, ठीक है, उस वक्त तुम्हें अपना इज्तिहाद तुम्हारे लिए होता है। ठीक है ना, अब इज्तिहाद तुम करो उसके उसूल है कि भाई कुरान में देखो कैसे क्या चीज जायज होती है, क्या चीज नाजायज होती है, या नबी अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत तुम्हारे सामने मौजूद है उसमें देखो क्या चीज जायज है क्या चीज नाजायज है, इसको इज्तिहाद करना कहते हैं। लेकिन यहाँ तो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज राइट देयर, उनसे पूछ सकते हो तुम जाकर के, उन तक जो है वो तुम्हारी रसाई मौजूद है, ही इज एक्सेसिबल टू यू। ठीक है ना, तो तुम अपनी मर्जी से फिर क्यों जो है वो इस तरह के इकदाम कर रहे हो। ठीक है ना, तो ये करना तुम्हारे लिए जुल्म हो जाएगा। ठीक है, दो अलग अलग सिचुएशन है ना, एक जब मौजूद है भाई तो उस वक्त पूछना जो है ना उसके अंदर, और जिस चीज का वो नहीं कह रहे वो फिर तुम्हारे लिए जुल्म बन जाएगा। ठीक है, और जब वो पूछने का सिलसिला मौजूद नहीं है तो अब तुम में से जो इल्म वाले हैं वो इज्तिहाद करेंगे और जो कम इल्म वाले हैं वो उनके इज्तिहाद के ऊपर अमल करेंगे। ठीक है, यही दूसरे सूरतें हैं और यही सूरतें जो है आज भी अप्लीकेबल है। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम अगर हुक्म दे दे ना कि तुम जाकर के उन लोगों को रोको, ठीक है, तो फिर ये जुल्म नहीं होता। तो ये तो एक जनरल प्रिंसिपल हजरत ने यहाँ पे लिखा ना, इस्लाम जुल्म का इंतकाम का इंतकाम जुल्म से लेना नहीं चाहता, तो फिर ये तो हजरत ने एक जनरल प्रिंसिपल लिखा है। लेकिन बैत रिजवान क्यों हुई थी, उस्मान रज़ी अल्लाह के कत्ल के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने इंतकाम लेने का फैसला किया था, ठीक है ना, तो वो इंतकाम जो ले रहे थे तो उधर क्यों नहीं माफ किया नबी अलैहिस्सलाम ने, भाई वो अल्लाह के रसूल थे, वो अल्लाह की तरफ से जो है वो वही के ताबे थे, उसके मुताबिक वो इंतकाम लेने का फैसला फरमाया था और उसके ऊपर जो है वो मर जाने की बैत भी ले ली थी। ठीक है ना, लेकिन आप तो अल्लाह के रसूल नहीं है तो आप क्यों ले रहे हैं इंतकाम का फैसला। ठीक है ना, तो फर्क है इन दोनों सूरतों के अंदर ना, अल्लाह ताला बात की समझ नसीब फरमाया हमें भी। तो डिसिप्लिन, ठीक है ना, ये खाली कायदे आजम मोहम्मद अली जिना साहब जो है वो डिसिप्लिन डिसिप्लिन करके दुनिया से नहीं चले गए, डिसिप्लिन हमारे दीन का लाजमी जुज है, और नबी अलैहिस्सलाम की बात मानना, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट खलीफा साहब आते हैं उनकी बात मानना, फिर उनके बाद जो खलीफा साहब आते हैं उनकी बात मानना, ये तो दीन का हिस्सा है, इसके बगैर के थोड़ी सिलसिला चलता है कोई। बल्कि जुल्म के बदले में इंसाफ करना और इंसाफ पर कायम रहना ये सिखलाता है। ठीक है, तो ये अब जरा पर्सनल लाइफ के अंदर ज्यादा एप्लीकेबल होता है कि भी वहां पे जरा मियाँ बीवी हैं और वहां पे कोई ऐसा खास जो है वो बैत वाला सिलसिला नहीं है कि बीवी साहिबा ने शौहर के हाथ पे बैत करी है, तो उसके अंदर फिर घर के अंदर आपस के खानदानी मामलात के अंदर जो है वो इन प्रिंसिपल्स की एप्लीकेबिलिटी होती है, यानी डे टू डे अफेयर्स के अंदर इन प्रिंसिपल्स को हमें याद रखना चाहिए। लेकिन जो पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं बिग यानी लार्ज पैमाने के ऊपर जो अफेयर्स होते हैं ना, उनमें तो भाई अमीर जो कहेगा दैट इज गुड, और जो उसके खिलाफ किया जाएगा तो उसको जुल्म कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा बस ये पैराग्राफ मुकम्मल कर देंगे, क्लास का टाइम खत्म हो गया। तो कहते हैं कि इस्लाम जुल्म का इंतकाम जुल्म से नहीं लेना बल्कि जुल्म के बदले में इंसाफ करना और इंसाफ पर कायम रहना सिखलाता है। उन्होंने अपनी कुव्वत और इक्तदार के वक्त मुसलमानों को मस्जिद हराम में दाखिल होने और उमरा करने से जुल्मन रोक दिया था। तो इसका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि अब मुसलमान अपने इक्तदार के वक्त उनको इन अफआले हज से रोक दें। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने वही उतार दी कि नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस, ये वाला काम तुम। ठीक है, बस अल्लाह ताला खत्म आ गया। और जो हमने पहली आयत के आखिर में पढ़ा था, इन्नल्लाह यहकुम मा युरीद, जो चाहता है अल्लाह ताला उसका हुक्म करता है, बेशक अल्लाह ऐसा ही। ठीक है जी, अल्लाह ताला में अपने बंदों में और बंदियों में शामिल फरमाए और सही मानों में बंदगी की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।